समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपकी अपनी न्यूज मैगजीन परिक्रमा का। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम लाएंगे अब तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर। इसके अलावा हम बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्व की जिनकी आज है पुण्यतिथि या है जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के आज के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट दोस्त सिद्धार्थ सिंह और मेरे साथ हैं मेरे को होस्ट वीसी प्रमोद। सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार और प्रमोद, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू।
वेरी गुड आफ्टरनून टू यू ऑल्सो सिद्धार्थ, एंड आई थिंक वी शुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू विश ऑल आर लिसनर्स हैप्पी होली।
जी बिल्कुल, इस समय तैयारियां चल रही हैं होली की
और आपके फेस पे और खुशी है, लग रहा है आप बिल्कुल तैयार हैं कल के होली के लिए।
कल की, क्योंकि होली एक ऐसा फेस्टिवल है जिसकी तैयारी बहुत पहले से शुरू हो जाती है, लोगों के प्लान्स बन चुके हैं और इस समय अगर आप, जैसा कि हम अभी जब स्टूडियो में आ रहे थे प्रमोद, तो बाजार में जिस तरह की चहल पहल थी, रौनक थी, लोगों में जो उत्साह था होली को लेकर और होली के गाने चारों तरफ बज रहे, तो माहौल तो पूरा सेट हो गया है, अब बस सुबह का इंतजार है।
एब्सोल्युटली राइट, एंड एज राइटली सेड, वी हैव फॉर यू अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, आवर डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्सूल, बिजनेस ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर, ऑल दीज ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। बट वी बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस फर्स्ट। द गवर्नमेंट एक्सटेंड्स बैन ऑन अनियन एक्सपोर्ट्स टू फर्दर ऑर्डर्स।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, उचित समय पर नीतिगत निर्णयों और आर्थिक सुधारों से भारत कोविड संकट से निपटने में सफल रहा।
Pakistan Foreign Minister Mohammad Ishaq Dar says his country will seriously consider restoring trade ties with India.
मॉस्को आतंकी हमले में मृतकों की संख्या बढ़कर 133 हुई।
And in sports, Maharashtra's Nahid Divecha wins 2 gold medals in Indian Masters National Badminton Championships in Panchkula. And now it's time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. Today we'll talk about World Tuberculosis Day.
जी हाँ, आज विश्व ट्यूबरकुलोसिस डे है और ट्यूबरकुलोसिस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। इसे विश्व तपेदिक दिवस और क्षय रोग के नाम से भी जाना जाता है। टीबी एक संक्रामक यानी इन्फेक्शियस डिजीज है जो बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है। टीबी भले ही एक संक्रामक बीमारी है, लेकिन समय रहते अगर इसका इलाज कराया जाता है तो इसका उपचार भी संभव है। और हमारे देश में हर साल टीबी के लाखों मामले सामने आते हैं और सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार 24 मार्च 1882 को डॉक्टर रॉबर्ट कॉच ने टीबी के बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज की थी। और डॉक्टर रॉबर्ट कॉच की इस खोज ने इस जानलेवा बीमारी के इलाज में बहुत अहम भूमिका निभाई। इसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर रॉबर्ट कॉच को 1905 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और 24 मार्च के इतिहास को ध्यान में रखते हुए हर साल 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है और हर साल विश्व टीबी दिवस की एक थीम होती है और इस साल 2024 की थीम है, हाँ हम टीबी खत्म कर सकते हैं। तो आइए आज के दिन हम ये शपथ लें कि हम अपने आसपास लोगों को इस बीमारी के बारे में जागरूक करेंगे और टीबी को भारत में जड़ से खत्म करने में अपना योगदान देंगे। रमेश,
वेरी ट्रू, Tuberculosis, TB, continues to pose a significant threat as one of the deadliest infectious diseases worldwide, affecting millions of individuals annually. Observed annually on the 24th of March, World Tuberculosis Day serves as a poignant reminder of the ongoing fight against the disease. Tuberculosis, commonly known as TB, is an infectious disease primarily affecting the lungs and is caused by bacterial infection. The disease is often spread through the air via airborne particles released during coughing, sneezing or spitting by infected individuals. Fortunately, TB is both preventable and treatable. It is estimated that approximately a quarter of the global population harbors TB bacteria, with 5 to 10% of those individuals eventually developing symptoms and progressing to TB disease. People who carry the bacteria but aren't yet symptomatic cannot spread the disease. Treatment for TB disease typically involves antibiotics, as it can be fatal if left untreated. सिद्धार्थ, अभी भी टीबी के केसेस हैं क्या
जी
इंडिया में?
ज्यादा केसेस आते हैं और सरकार की ये प्राथमिकता है कि टीबी को हम जल्द से जल्द कंट्रोल करें। और इसके बारे में हमने एम्स की एडिशनल प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन में डॉक्टर नीरज निश्चल से बात करी कि कैसे हम टीबी का बचाव कर सकते हैं, क्या सावधानियां रख सकते हैं, क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो उन्होंने हमें बताया
टीबी की बीमारी हम कह सकते हैं कि इसको ग्रेटेस्ट मिमिकर अमंग्स डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ये शरीर के किसी भी हिस्से को अफेक्ट कर सकता है और इसके सिम्टम्स शरीर के किस हिस्से को इसने अफेक्ट किया है उस पर निर्भर करता है। तो जो सबसे कॉमन सिम्टम्स है जो इरिस्पेक्टिव ऑफ कि किस शरीर के किस हिस्से को अफेक्ट किया है, उसमें बुखार आना जो यूजली लो ग्रेड का होता है, शाम के समय आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, उसके अलावा जो अगर भूख न लगना, वजन कम होना, तो ये सारी चीजें जो किसी भी तरह के टीबी में हो सकता है। उसके अलावा डिपेंडिंग ऑन कि किस ऑर्गन सिस्टम को इसने अफेक्ट किया है, जैसे फेफड़े की टीबी में जो खांसी आना, बलगम आना, बलगम के साथ खून आना, ये काफी कॉमन होता है। अगर ये सांस खाने की नली को अफेक्ट किया है, जो आप हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक को अफेक्ट किया है, तो उस सिचुएशन में पेशेंट को डायरिया हो सकता है, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। उसके अलावा भूख न लगना, ये बहुत कॉमन होता है। उसके अलावा पेट में पानी भर जाना, जो हम कहते हैं जो पेरिटोनियल ट्यूबरकुलोसिस में होता है। उसके अलावा अगर हड्डियों को अगर ये अफेक्ट कर रहा है, हड्डी जैसे अगर रीढ़ की हड्डी अफेक्ट कर रहा है, तो लोगों को बैकएक की समस्या होती है। उसके अलावा अगर बीमारी पे हमने ध्यान नहीं दिया, तो ये बैकएक धीरे धीरे हमारे रीढ़ की हड्डियों के थ्रू हमारे स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट कर सकता है, जिसमें फिर हमारे जो न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स होते हैं हाथ और पैर में आ सकते हैं, झंझनाहट की शिकायत का, हाथ कमजोर होना, ब्लैडर बॉल पे कंट्रोल न होना, ये सारी लक्षण जो है रीढ़ की हड्डी की टीबी में आ सकती है। उसके अलावा जो अगर ये दिमाग को अगर अफेक्ट करता है, तो उसमें जो है सिर दर्द होना, अगर दिमाग का प्रेशर ज्यादा बढ़ गया तो उसके चलते जो मरीज है वो गफलत में जा सकता है। उसके अलावा जो ट्यूबरकुलोमा और बाकी चीजें जो ब्रेन के टिश्यू को अफेक्ट होने से होता है, उसके चलते मिर्गे के दौरे आना, ये सारे काफी कॉमन है। तो डिपेंडिंग ऑन कि शरीर के किस हिस्से को ये अफेक्ट कर रहा है, स्पेशली जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को अगर अफेक्ट कर रहा है, तो उसमें इनफर्टिलिटी एक कॉमन समस्या देखते हैं। तो कहने का मतलब कि ये ग्रेट मिमिकर है, डिपेंडिंग ऑन कि किस शरीर के किस हिस्से को अफेक्ट कर रहा है, ये सिम्टम्स जारी कर सकते हैं।
तो प्रमोद, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि किस तरीके से टीबी के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, तो हमारे बहुत सारे ऐसे लिस्टर्स हैं जो हमें भी सुन रहे हैं, और किसी के पास भी इस तरह के अगर आपके पास लक्षण हैं, तो जरूर आप अपने निकट के जो टीबी सेंटर्स भी हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में टीबी सेंटर्स होते हैं, आप वहां पे या किसी भी फिजिशियन के पास आप जाकर अपनी जो बेसिक जांच है वो करा सकते हैं, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि आपको टीबी नहीं है। और यहां पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको और बताना चाहता हूं, अगर हिस्टोरिकल अगर आप देखो विसी, तो यहां पर क्या होता है, टीबी के इलाज में बहुत सारी एक कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स दिया जाता है, जिसमें रिफेम्पसिन है, पाइरोजिनामाइड है, इस तरह की जो एंटीबायोटिक्स होती। होता क्या था कि इसके ट्रीटमेंट में लोग बीच में जैसे ही उन्हें सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलता था वो दवाएं छोड़ देते थे, क्योंकि कई सारी दवाएं उनको रेगुलर इंटरवल्स पर खानी पड़ती थी।
करेक्ट।
पर धीरे धीरे विद द इवोल्यूशन ऑफ यू नो टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस, फार्मास्यूटिकल्स, तो कंपनीज ने ये कोशिश करी कि हम एक किट बना दें पेशेंट्स के लिए, ताकि वो किट के फॉर्म में दवा हो। तो एक तो ये है कि आपको पता है कि ये चार या पांच मेडिसिन
पूरी खानी
है, तो इसको हम भूलेंगे नहीं। तो एक पेशेंट ईज के साथ इन दवाओं को दिया गया, तो अब हम ये देखते हैं कि जल्दी पेशेंट उसको छोड़ता नहीं है। तो आज की डेट में स्पेशली फॉर द रूरल पॉपुलेशन ये बड़ी समस्या है, क्योंकि अगर बीच में हम इलाज छोड़ देते हैं, अगर नॉर्मली छह महीने का इलाज होना चाहिए, बट अगर हमने बीच में अगर इलाज छोड़ दिया, तो जो उसके रेसिड्यूज हैं बैक्टीरिया के, वो तो इन्फेक्शन अंदर रह जाता है,
तो
रिकरेंस। और कई बार पेशेंट में ऐसा देखा गया है कि ये रिकरेंस इतने ज्यादा वक्त के बाद हुआ है कि बाद में चाहे वो इंटेस्टाइन की बात हो, लंग्स की बात हो, रिकरेंस ऑफ डिजीज बहुत कॉमन हो गया है। तो इसलिए हमको जो ट्यूबरकुलोसिस का जब भी इलाज करें, तो पूरा पूरा इलाज करा के डॉक्टर से ये सुनिश्चित कर लें कि नाउ देयर अब वो डिजीज से फ्री है, अब ये बीमारी उनको नहीं है।
वंडरफुल इन्फॉर्मेशन सिद्धार्थ, I'll take you back to the history also. The history of World TB Day goes back a long time ago. In 1834, Johann Schlönen first coined the term tuberculosis through the disease caused by the mycobacterium tuberculosis, as you just rightly said, has existed for millions of years as per the Center for Disease Control and Prevention. Very interestingly, Siddharth, throughout history, iske naam badal chuke hain. The Greeks called it pathisis, the Roman called it tabus, and the Hebrews called it schnaina pet. In the 1700s and 1800s, it was known as the White Plague, and consumption due to its characteristic of making individuals appear pale and wasted.
बिल्कुल, तो अगर आप देखें तो ये इतनी पुरानी बात हो गई है, 18th सेंचुरी से 1882 को ये जो वायरस है, ये बैक्टीरिया जो है ये डिटेक्ट हुआ था, तब से आज तक, और जरूरत है इसमें जागरूकता फैलाने की लोगों के बीच में, ताकि इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सके.
एब्सोल्युटली.
और श्रोताओं, अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास चलने का और जानने का कि क्या कुछ खास है उनके पास. और प्रमोद, हम सबसे पहले कहां जा रहे हैं?
विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश. द इंडियन एयरफोर्स रिसेंटली एक्टिवेटेड एन इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी एयर स्ट्रिप ऑन अ नेशनल हाईवे इन आंध्र प्रदेश बापाटला डिस्ट्रिक्ट, डिस्प्लेइंग कोलैबोरेशन बिटवीन द IAF एंड सिविल एजेंसीज. मोर फ्रॉम आवर कॉरेस्पॉन्डेंट.
Indian Air Force fighter and transport aircraft recently carried out operations on an emergency landing facility airstrip on National Highway 16 near Ardhankin, Bapatla district of Andhra Pradesh. Su-30 and Hawk fighter successfully carried out overshoots during the activation, while AN-32 and Dornier transport aircraft landed and subsequently took off from the strip. The activation showcased the high level of synergy and liaison between civil agencies such as National Highways Authority of India, district administration, state police and the Indian Air Force towards conduct of complex multifaceted activities. Previously, such activation was conducted on 29th December 2022. The 4.1 km long and 33 meter wide concrete airstrip has been constructed by the National Highway Authority of India as per specifications provided by the Indian Air Force. While other airstrips are already operational in various parts of the country, this emergency landing facility in Andhra Pradesh has been recently come into force in South India. Emergency landing facility highway airstrips enhance flexibility of air operations during contingencies and are invaluable assets during humanitarian assistance and disaster relief operations in far-flung areas. Indian Air Force with the Ministry of Road Transport and Highways are working jointly for creation of emergency landing facilities at suitable locations. Allu Murali for Parikrama from Vijayawada.
Moving on to Cochin, Siddharth, the Cochin International Airport has announced its summer schedule, providing additional services to London, Maldives, Agati and Bangkok. The new schedule will be effective from the 31st of this month till the 26th of October. More from our Kochi correspondent.
The newly announced schedule will see 29 airlines, among which 26 are operating in the international sector. IndiGo tops the list with 49 weekly departures to international destinations, while Air India will have 41 departure operations weekly. There will be 66 flight departures to Abu Dhabi, 46 to Doha and 45 to Dubai. Thai Airways will commence tri-weekly flights to Bangkok Suvarnabhumi Airport, while Lion Air will operate daily flights to Bangkok Don Mueang Airport. Akasha Air will commence its operations in the international sector soon, while Air India will add an additional flight to London Gatwick Airport. In the domestic sector, the summer schedule includes 122 flights to Bengaluru, 71 to Delhi, 68 to Mumbai, 61 to Hyderabad, 49 to Chennai, 16 to Agati, 7 each to Ahmedabad, Goa, Kannur, Kolkata, Pune and Thiruvananthapuram, and 5 to Salem. Meanwhile, within just 14 months of its inception, the business jet terminal of the Cochin International Airport, catering to exclusive chartered jets, completed 1,000 flight services, marking a significant milestone in its operations. Raj Mohan, Akashwani News, Kochi.
विसी, जो नर्वस सिस्टम की जब भी बात आती है या न्यूरोलॉजी की बात आती है
तो मैं बहुत नर्वस हो जाता हूँ.
आप बहुत नर्वस हो जाते हैं, लेकिन आप नर्वस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रेन जैसे एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम को आज की डेट में अगर हम देखें तो एम्स में एक टेस्ला एक टेक्निक आई है जो कि MRI मशीन के द्वारा ब्रेन की जांच करता है और उसमें क्या गड़बड़ी है ये बताता है. तो ये बहुत बड़ा इनोवेशन है.
सिद्धार्थ की सिर्फ गाड़ी थी टेस्ला, ये नया मशीन भी आ गया.
नई मशीन भी आ गई है और इसके बारे में ज्यादा बता रहे हैं हमारे संवाददाता आनंद कुमार
जी.
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने दिल्ली ब्रेन से संबंधित जटिल बीमारियों के त्वरित पहचान के लिए अत्याधुनिक MRI मशीन 7 टेस्ला का उपयोग करने पर विचार कर रही है. एम्स में तंत्रिका विज्ञान केंद्र के प्रमुख डॉक्टर SB गायकवाड़ ने बताया कि फिलहाल एम्स में 1.5 और 3 टेस्ला मशीन का उपयोग किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि ब्रेन से संबंधित जटिल समस्याओं का पता 7 टेस्ला MRI मशीन के जरिए लगाया जा सकेगा, जिससे इलाज में भी आसानी होगी. डॉक्टर गायकवाड़ ने बताया कि इसका उपयोग ड्रग रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी, स्ट्रोक और ब्रेन ट्यूमर जैसी अन्य जटिल बीमारियों में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि विश्व के कुछ देशों में इस नई तकनीक का उपयोग किया जा रहा है जो मरीज के लिए सुरक्षित है।
सी टेस्ला के कंपैरिजन में अगर जैसे इनका फील्ड स्ट्रेंथ जो मेजर होता है यूनिट वो टेस्ला होता है, तो सी टेस्ला आप 7 टेस्ला में जा रहे तो मोर देन डबल आप उसकी फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ा रहे, तो इसकी जो रिजोल्यूशन कैपेसिटी भी वो भी बढ़ रही है। तो नेचुरली जो चीज 3 टेस्ला पे नहीं दिख रही है या 1.5 टेस्ला पे नहीं दिख रही है, वो 7 टेस्ला पे दिखने की बहुत ज्यादा संभावना है। लास्ट ईयर का डेटा है सितंबर 2023 का, उसमें 127 टेस्ला एमआर वर्ल्ड वाइड इंस्टॉल हुए डिफरेंट कंट्रीज, इंडिया में फिलहाल 2 नहीं है।
वहीं अमेरिका में मेयो क्लिनिक के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता ने बताया कि क्लिनिकल यूज के लिए इस मशीन के उपयोग की मंजूरी 3 साल पहले दी गई और ब्रेन से संबंधित बीमारियों का पता लगाने में इससे काफी मदद मिलेगी।
नहीं जान पाते कि स्ट्रोक किस कारण से हुआ, उनको लाभ होगा। कुछ ऐसी बीमारियां होती है जिनको हम बोलते हैं डीमायलिनेटिंग डिजीजेस, जिसमें जो है ब्रेन में सूजन आ जाती है, तो 7 टेस्ला एमआरआई से ज्यादा बारीकी से देख पाने के बाद वो बीमारियों के जो अपीयरेंस है ब्रेन में वो अलग होती है, तो हमारी ब्रेन की बीमारी को समझ पाने की और बारीकी से बता पाने की क्षमता थोड़ी और अच्छी हो जाएगी।
एम्स नई दिल्ली द्वारा न केवल मरीजों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण इलाज मुहैया कराया जा रहा है बल्कि इलाज के लिए उपयोग में आने वाली अत्याधुनिक मशीनों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। परिक्रमा के लिए आनंद कुमार।
और श्रोताओं, समय पूरे देश में चुनाव का माहौल बन गया है और वैसे अगर हम देखें तो आकाशवाणी समाचार भी चुनाव को लेकर अलग अलग अपनी रिपोर्ट्स दे रहा है और इसकी कवरेज की हमने बहुत सारी तैयारी की है और रोज हम किसी न किसी स्टेट बेस्ड कवरेज देते हैं जहां पे संवाददाता जो है वो वहां के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। तो आज आप हमें कहां ले चल रहे हो, क्या बताने वाले हैं?
जी, आज मैं आपको बताऊंगा सिक्किम के बारे में, द नंबर ऑफ फेजेस, द डेट्स ऑफ पोलिंग। So in Sikkim, preparations are being made for the smooth conduct of the simultaneous elections for the lone Lok Sabha seat and 32 seats of the State Legislative Assembly. State Chief Electoral Officer D. Adanan told Akashwani News that efforts are on to facilitate all eligible electors, including the persons with disabilities, to exercise their franchise on the polling day in a free and fair environment. More from our Sikkim correspondent.
Simultaneous election for the Lone Lok Sabha seat and 32 seats of the State Legislative Assembly of Sikkim is scheduled to be held in the first phase on the 19th of the next month. Counting of votes for the State Assembly will be held on the 2nd of June, while that of the Lone Lok Sabha seat will be held on the 4th June 2024. About 4,63,800 electors, including 2,32,400 male and 2,31,450 female, as well as 3 third-gender voters are eligible to exercise their franchise in this election. 2,476 senior citizens and 4,184 persons with disability will exercise their franchise in this election. As many as 12,659 young voters in the age group of 18 to 19 years will also exercise their franchise for the first time in this election. The electors will exercise their franchise at as many as 573 polling stations, including 88 urban and 485 rural polling stations. Ibom Sasarma, Akashvani News, Gangtok.
और सिक्किम के बाद अब रुख करते हैं उत्तराखंड का और वहां चुनाव को लेकर वैसे क्या माहौल है।
जी, इन उत्तराखंड पॉलिटिकल पार्टीज हैव कमेंस्ड कैंपेनिंग अपॉन द अनाउंसमेंट ऑफ लोकसभा इलेक्शन डेट्स। वोटिंग इज टू बी हेल्ड इन द फर्स्ट फेज ऑन ऑल 5 सीट्स इन द स्टेट एंड द नॉमिनेशन पे प्रोसेस हैज आल्सो स्टार्टेड। मोर फ्रॉम देहरादून कॉरेस्पॉन्डेंट।
उत्तराखंड में पहले चरण में 19 अप्रैल को राज्य की 5वीं लोकसभा सीट पर मतदान होना है। प्रदेश में सुगम निर्वाचन के लिए कुल 11,729 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या 83 लाख से ज्यादा है, जो निर्वाचन में उम्मीदवारों का भाग तय करेंगे। इस बार राज्य के करीब 1,45,000 युवा मतदाता पहली बार मतदान करेंगे। इस बीच राज्य की 5वीं लोकसभा सीटों पर अभी तक 9 नामांकन हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के हरिद्वार से उम्मीदवार व राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपना नामांकन भर लिया है। इस सीट पर हरिद्वार की खानपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने भी नामांकन भरा है। वहीं भाजपा के अजय टंटा ने अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र से नामांकन पत्र भरकर अपनी दावेदारी पेश की है। उधर कांग्रेस ने टिहरी, अल्मोड़ा, नैनीताल, हरिद्वार और गढ़वाल सीट से अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, लेकिन पार्टी के किसी भी उम्मीदवार ने अभी तक अपना नामांकन नहीं भरा है। वहीं दूसरी ओर बसपा ने भी राज्य की 4 लोकसभा सीट पर अपने उम्मीदवारों का नाम तय कर लिए हैं। प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल भी लोकसभा चुनाव में अपनी दावेदारी पेश कर रही है। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
And now we'll take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
On the 24th of March 1902, the revolutionary organization Anushilan Samiti was formed by freedom fighter Pramathanath Mitra in Bengal Presidency. It was headed by Barindra Kumar Ghosh, the younger brother of Sri Aurobindo Ghosh. A number of nationalists were associated with it at various times, notably Aurobindo Ghosh, Bhupendranath Datta, Deshbandhu Chittaranjan Das, Surendranath Tagore, Pulan Bihari Das, Sarla Devi, Raj Bihari Bose, Bagha Jatin, Sachendranath Sanyal, Jatin Das, and Bipin Chandra Pal.
The genesis of the Samiti can be traced to the formation of youth clubs devoted to the threefold aims of physical, mental, and moral development of the youths. The Samiti propounded revolutionary violence for ending the British Raj in India. Its two arms, the Dhaka Anushilan Samiti, centered in Dhaka, and the Jugantar Group, centered at Calcutta, were formed and organized on the lines of the secret societies of Russia and Italy. The Samiti was inspired by the thoughts, speeches, and writings of Swami Vivekananda and influenced by Bankim Chandra Chatterjee's Anand Math.
From 1907, the members belonging to the Anushilan Samiti were very active in revolutionary activities. Aurobindo Ghosh and Bipin Chandra Pal began the Bengali nationalist weekly Jugantar, New Era, and its English counterpart, Bande Mataram, in March 1906, that openly preached armed rebellion to create the necessary revolutionary mentality among Indians. The Muzaffarpur killing is one of the most famous events in the history of the revolution in Bengal. Both Khudiram Bose and Prafulla Chaki became heroes among the masses of Bengal. A bomb manufacturing factory was discovered in Maniktola Garden in Calcutta. Barindra Kumar Ghosh was brought to trial in the so-called Alipur conspiracy case. The Alipur trial led to a series of arrests and raids, culminating in the divisions in the Anushilan Samitis.
Alarmed by the revolutionary activities of the Samiti, the British took a series of measures to crush it. Their activities and that of the Ghadar Party led to the passage of the Defence of India Act 1950. After World War I, the draconian Rowlatt Acts were passed to deal with them. The Dhaka Anushilan Samiti apparently broke up when Pulin Das was arrested and deported for life. Master Das Surya Sen conducted the last revolutionary act in East Bengal at the Chittagong Armory Raid on the 18th of April 1930. We also remember Ghadarite revolutionary Gyani Pritam Singh, who actively used to promote patriotism amongst Indians in Thailand. In 1940, he was instrumental in the organization of the Independent League of India with the support of former colleagues in the Ghadar Party.
Pritam Singh worked in coordination with a Japanese intelligence officer to counter British power. Pritam Singh was selected as a member of a goodwill mission to Tokyo for holding informal discussions on Indian independence. However, after taking off for Tokyo, Japan, on the 24th of March 1942, his airplane crashed and he was killed. We salute the great freedom fighter, Gyani Pritam Singh.
और श्रोताओं, आप सीधे चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल।
That's right, the Badminton World Federation has announced the draws for the upcoming 2024 Thomas and Uber Cup tournaments in Chengdu, China. Defending champion Indian men's team has been clubbed with tournament's most successful team, Indonesia. India will also face Thailand and England in Group C. India had made history by clinching the Thomas Cup in 2022 with an impressive victory over Indonesia in Bangkok. Meanwhile, in the Uber Cup, the Indian women's badminton team has been placed in Group A with China, Canada and Singapore.
और टेबल टेनिस की बात करें तो लेबनान में बेरूत विश्व टेबल टेनिस टूर्नामेंट के मिक्स डबल्स फाइनल में आज दो भारतीय जोड़ी आमने सामने होंगी। सत्यन ज्ञान शेखरन और मनिका बत्रा की जोड़ी का मुकाबला आकाश पाल और पायमंती बैशी की जोड़ी से होगा। और परिक्रमा में अब समय है उन हस्तियों को याद करने का जिनकी आज पुण्यतिथि है या है जन्मदिवस। आज पुण्यतिथि है राधिका रमण प्रसाद सिंह की, जिनका हिंदी के आधुनिक गद्यकारों में प्रमुख स्थान है। उन्होंने कहानी, गद्य, काव्य, उपन्यास, संस्मरण, नाटक सभी विधाओं में साहित्य की रचना की। उनका संबंध देश के अनेक साहित्यिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्थाओं से रहा। राधिका रमण प्रसाद सिंह की गणना हिन्दी के यशस्वी कथाकारों एवं विशिष्ट शैलीकारों में होती है। उन्होंने लगभग 50 वर्षों तक हिंदी की सेवा की। आधुनिक हिंदी कथा साहित्य में आपका स्थान कानों में कंगना के लिए स्मरणीय है। प्रमुख रचनाओं की बात करें तो राम रहीम, पूरब और पश्चिम, काली टोपी, बिखरे मोती, धर्म की धुरी, अपना पराया जैसी रचनाओं को पाठकों ने बेहद पसंद किया। सन 1962 में भारत सरकार ने उन्हें साहित्य के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए पद्म भूषण से अलंकृत किया था।
Today is also the death anniversary of a famous Malayalam film actor, Jose Prakash. He was born in 1925, but he died on 24th of March 2012. He was an Indian actor and singer. He also turned actor with a movie, Coot Every Day, and we have a wonderful song from that film. Let's listen to that song. Jose Prakash was awarded the J.C. Daniel Award in 2011, a day before he died, aged 86. In a career spanning around 40 years, he is known for portraying some of the iconic villain characters in the Malayalam film industry.
और आज हम हरिभा उपाध्याय को भी याद कर रहे हैं, जो देश के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। उनकी आज जयंती है। उनकी हिंदी साहित्य को विशेष देन उनके द्वारा बहुमूल्य पुस्तकों का रूपांतरण है। कई मौलिक रचनाओं के अलावा उन्होंने कई प्रमुख रचनाओं का हिंदी में अनुवाद किया। हरिभा जी की अनेक पुस्तकें आज हिन्दी साहित्य जगत को प्राप्त हो चुकी हैं। महात्मा गांधी से प्रभावित होकर हरिभा उपाध्याय राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े थे। पुरानी अजमेर रियासत में उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। उनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो बापू के आश्रम ने, सर्वोदय की बुनियाद, साधना के पथ पर विश्व की विभूतियां पाठकों ने बेहद पसंद किया। और श्रोताओं, आज ही जयंती है कर्नाटक संगीत में 500 से अधिक संगीत रचनाओं का निर्माण करने वाले सुप्रसिद्ध रचनाकार मुथुस्वामी दीक्षितर की। इनका जन्म 1775 में आज ही के दिन तिरुवारूर तंजावूर में हुआ था। वे रामस्वामी के पुत्र थे। उनके दादा का नाम गोविंद दीक्षितर था। मुथुस्वामी दक्षिण भारतीय कर्नाटक संगीत शैली के महान कवि और रचनाकार थे। मुथुस्वामी कर्नाटक संगीत के 18वीं शताब्दी के संगीतकारों की टिकड़ी, जिसमें त्यागराज, श्यामा शास्त्री और मुथुस्वामी दीक्षितर, इन सब में सबसे कम उम्र के संगीतकार थे। और ज्यादातर इनकी रचनाएं आज भी व्यापक रूप से कर्नाटक एवं दक्षिण भारत में होने वाले विभिन्न संगीत कार्यक्रमों में प्रसिद्ध संगीतकारों द्वारा प्रस्तुत की जाती हैं।
That's right, his compositions of which around 500 are known and are noted for the elaborate poetic descriptions of Hindu gods and temples and for capturing the essence of the raga forms through the vainika style that emphasizes gamakas. We have a beautiful composition. Let's listen to it.
Swarami maga ganapati manasa Swarami maga ganapati manasa Swarami maga ganapati manasa Swarami maga ganapati manasa Swarami maga
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। इस समय सभी लोग होली की तैयारी में लगे हुए हैं और आप सबको इंतजार है सुबह का, जब रंगों के त्योहार होली की धूम होगी। बीसी
एब्सोल्युटली, वी विशिंग ऑल आवर लिसनर्स अराउंड द वर्ल्ड एंड इन इंडिया अ वेरी वेरी हैप्पी होली।
और श्रोताओं, हम आपसे यही अनुरोध करेंगे कि आप इस त्योहार को भाईचारे से मनाएं और सबके बीच खुशियां फैलाएं। आपकी एक बेहतर शाम की शुभकामनाओं के साथ अनुमति दीजिए सिद्धार्थ सिंह और वीसी प्रमोद को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। नमस्कार।